તારીખ 4/4/1991 શ્રી દ્રવ્ય દ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 351 અને 353 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું પાવાપુરીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 32
પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો જીવ કરીને પાર પામે છે તેવું લાગે છે. બાકી તો માત્ર કોઈ સ્થિતિ ઠુંગર જેવા જ્ઞાની વિના સર્વેને આ પ્રવૃત્તિ કરતા કલ્યાણનો વિચાર કરવો અને નિશ્ચય થવો તથા આત્મસ્વસ્થતા થવી દુર્લભ છે. એ
બાકી તો માત્રન કરે જ્ઞાની કે બનાવ આશય કે બના એ સબ કરતે હોય ભી કલ્યાણ હો એ સંભવ નહીં.
જ્ઞાની કા આશ્રય કે વિષયમાં તો ઇતના પહેલું છે વિવેક કે બાત આઈ હૈ. અનુભવ બહુ કરે मूल बात में अपेक्षा लगाता है तो मुझे पता चलता है, क्योंकि उसमें जो सिफात होती है वो टूट जाती है, अपेक्षा लगाने से दिलासा नहीं मिलता। मूल बात पर जोर देते वक्त कोई अपेक्षा लगाकर दूसरे अपेक्षा से ऐसा भी है, इससे तो मेरे बाद दूर हो जाने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए खटकता है। वस्तु अमन सामर्थ्य है अथवा उसके प्रति जोर आता है, परंतु नहीं दूसरी अपेक्षा खोलकर वैसे जोर को ढीला करना वो अपेक्षा संबंधित भी प्रयास है, इसलिए तो करते हैं। मैंने ये बात आती है आगे मैं भी काफी चर्चा करी कि नाम सामान्य तो पर्याय में है, लक्षण पर्याय में है, जो द्रव गुण और जो अपेक्षा है, भेद की अपेक्षा, वो सिर्फ जानने का विषय है। एक में वस्तु के बंधारण को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सब्सटेंस क्या है उतना समझने से इससे आगे कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि सतरूप से तो वस्तु एक अभेद है, द्रव पड़े से तो कोई भेद नहीं। अब जब कैसे आत्मा आश्रय हुए, किस चैनल से हुए, जब ये बात कहने की विवेक्षा चलती है तो उसी बात पर ध्यान नहीं देते हुए अब पर्याय का क्या है, द्रव का क्या है, ध्रुव का क्या है, इस बात पर जब ध्यान जाता है कहने के जो अभिप्राय है, उद्देश्य है, ये उद्देश्य छूट जाता है, तो नजर में उद्देश्य नहीं रहता, कहने वाला जिस उद्देश्य से बात करता है तो उद्देश्य ध्यान में नहीं रहता। इसलिए स्वामी सार ने कहा कि राज है सब कुछ जल है, तो इसके पीछे कोई उद्देश्य है, राग चैतन्य विकार है, आत्मा का विभाव है, क्या कुंकुनाचार्य को इतना पता नहीं है, अमृतचंद्राचार्य को इतना पता नहीं है कि एक अवस्था विकार की बात चल रही है, सीधा ही कहते हैं धार कर पुद्गल है, पुद्गल के परिणाम, तो इसके पीछे उद्देश्य कौन सा है, उद्देश्य आपको देखेंगे। चंद्र भाई ने तो ये कह दिया कि तो भाषा अलंकार है क्या, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार तो अलंकार नहीं, ये तो रहस्य वाली बात, पारमार्थिक रहस्य यहाँ छिपा है, राग को पुद्गल कहने में कोई पारमार्थिक रहस्य छिपा, कोई भाषा बनानी नहीं है ऐसी, कोई भाषा बनाने के तौर से, शैली बनाने के तौर से नहीं चलती है ना, कोई रहस्य है। तो ये बात तो खोली है शिव जी ने कि दिगंबर आचार्यों के ऐसे जो तीखे वचन देखकर रहस्य रहस्य समझ में कुछ नहीं आ रहा है, जो पूरा तो रहस्य बार आ ही नहीं सकता भाषा में, लेकिन कुछ अंश में ये टोन बार आ जाता है परमार्थिक रहस्य का, तो ये अभिप्राय है इसके पीछे। सामने बैठता है तो जो माल है वो निकल जाता है उसी उसका आगे जाकर के कोई अध्यात्म की बात आती है तो अच्छा नहीं लगता है। हमको वहाँ जो पांचन संदर्भ में देते हैं तो अगर नियम सार के कोई बात करते हैं तो आचार्य की बात है, प्रद्रवन प्रभाव विधेयम सब विराज की है, वो आचार्यों की बात है। तो ये कोई कहना जरूरी नहीं है कि उन लोगों को भंडारण का ज्ञान था कि नहीं था, इसकी चर्चा ही नहीं कर सकता। जब ये बंधारण से का बंधारण को जानते हुए भी इससे कोई जैसे कि उसका कोई उल्लंघन होता हो ऐसी कोई बात करते हैं तो हमें अवश्य वहाँ चौंक जाना चाहिए कि कोई इससे भी कोई आगे की महत्वपूर्ण बात चल रही है, तब ये बंधारण के बात को लक्ष्य में नहीं रखते हुए सारा अध्यात्म का विषय द्रव्यान योग के सिद्धांतों से पर है। द्रव्यान योग के जो वस्तु के स्वरूप के बंधारणीय सिद्धांत है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है, इससे कोई आगे की परे की बात हुई है वो अध्यात्म का विषय है, क्योंकि इससे पर है वो उसी दृष्टि से उसे नहीं देखे, बीच में बात को लगा दें उद्देश्य खत्म हो जाए, किसी को उद्देश्य वचन कहते
हैं। लोक में नहीं बचते अति प्रेम को डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं जो दो शरीर और एक आत्मा।
हाँ
सच्ची कृष्ण मैं तो भक्ति का
है,
आत्मा है कैसे हो
कहेंगे तो शरीर दो है उनकी आत्मा तो एक है,
भाव की कोई उचिता
है तभी उस बात को ठीक ढंग से कुछ अंश में बता सकते हैं, पूरे अंश में नहीं कुछ अंश में बता सकते। को इस बात को पढ़ते हुए इसका संपादन में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अकाउंट भरने का सर्वथा नहीं भरे वो भी योग्य नहीं लगता था, और भरने में उनके खुद का अभिप्राय इंसान में दिखता था, लेकिन खोले कोई अपेक्षा उनका कोई सोर्स तो नहीं टूटता है, इस तरह नहीं खोल अपेक्षा इस तरह नहीं खोलने की सपोर्ट टूट जाए ऐसा नहीं करना। तो जिसका ग्रंथ है उसके उद्देश्य विरुद्ध बात हो गई ना, तो ये सिद्धांत कहां से मिल गया, कौन से शास्त्र में हमें मिलेगा, अपेक्षा ज्ञान में भी ये दोष आता है, ये कहाँ से निकालोगे। अपेक्षा तो बहुत सी बातें हैं, अपेक्षा से शास्त्र भरे हैं, लेकिन अपेक्षा ज्ञान में ये गड़बड़ होती है। जैन दर्शन तो शायदवाद है तो अपेक्षा तो खोलेगा, अपेक्षा खोलने में किस प्रकार से दोष आता है,
अपेक्षा की बात करते हुए टोन से जो कितना फोर्स कहाँ जाता है
બહુ ભાગ જ્ઞાની દરકારી નહીં કરતા જો મસ્તી મેં જો બાત ઉનકી નિકલ જાતે ઉસ વક્ત ઉનકો યે વિચાર નહીં આતા કે કિસકો ક્યા નુકસાન હો જાયેગા વો તો પાત્ર કો સામને રખતે હુએ લિખ જાય ઓર અપાત્ર કો સામને રખતે હુએ નહીં કહેતે ઉનકો તો વિકલ્પ નહીં હોતા ઇસસે ક્યા એસા તો નહીં હોગા એસા તો નહીં હો જાયેગા લોગ હૈ ભાઈ કો ગલત સમજ લેંગે તો ફર કભી બોલતે બોલતે મૌન રહે જાતે ઉસ વક્ત વો બીચ મેં બોલને કા થોડો ચાલુ કર દે મેને એસા કહા ભાઈ જી કી બાત મેં જો બાત હૈ વો અપેક્ષા સે હૈ દૂસરી અપેક્ષા એ ભી હૈ એસા કરતે વો દૂસરી અપેક્ષા કો બતાતે હૈ એક દો તીન ચાર દફે એસે બાર બાર બતાને લગે ફિર ઉન્હોને યે બાત નિકાલ દી કે મૂળ બાત પર કોઈ અપેક્ષા લગા કે ઉસકો દેના હમ સબ મુઝે તો ખટકતા હૈ મેં વારાણસી મેં ભાઈ કી બાત ઉનકો અખરતી થી એની વાત મેં બોલા ઇસ દો નહીં હૈ નહીં હૈ એક હી નહીં હૈ વો ભી ઇનકે સામને ક્યા બાત હૈ વો ઠરતા તો બહોત જલ્દી સે ચલતે થે તો સુબહ ચર્ચા ચલી દોપહર કો ચલી ફિર રાત્રિ કો યા દોપહર કો એક્ઝેક્ટલી આદમી કુછ લેટ આયે સ્પષ્ટીકરણ દીધા વિના પૂછે તો ચર્ચા એસી ચલતી સુંદર ઇતના મસ્તી આ જતી હૈ કે અબ તો સુનને ક્યા હૈ અબ તો જમ જાના હૈ પહેલે તો આને કા વિચાર હી નહીં ચલા અબ ક્યા સુનના હૈ ફિર વો સ્પષ્ટીકરણ દેતે દેતે ઇતના બોલે લેકિન દોર નહીં હૈ ને ગ્રંથર કો ભી સુનને કા તો ભાવ આતા હૈ ને બસ ઉતના બોલે ઓર વો એન્ટર હુએ કે યહાં તો દો નહીં હૈ હી નહીં એક હી નહીં હૈ હમારે યહાં દૂસરા નહીં હમારે પાસ નહીં હૈ યહાં સે બચ રહી ક્યા દો નહીં કી બાત કરતે હો દૂસરા નહીં નહીં હૈ એક હી નહીં હૈ દૂસરા નહીં હૈ હી નહીં હમારે પાસ अपेक्षा खोले और विपर्य खोए ऐसा हो जाता है।
बात को दिल्ली तक लेकर विपर्य दी है
हमें तो अपेक्षा ही
मुख्यता दूसरी थी अपेक्षा जो खोलूँ
उनकी मुख्यता होती है और अभिप्राय का विरुद्ध ये प्रकार अभिप्राय की विरुद्धता होती है। अभिप्राय वो पारमार्थिक है पारमार्थिक वलन को ढीला करना ये तो विप्रयास है नुकसान है
मार्ग से पीछे आना है।
ज्ञानियों का एक मत होने से ज्ञानी को निशंक आ जाते हैं दूसरे ज्ञानी का मत को कहां वो देखने को जाएगा ज्ञानी तो अनंत काल में परोक्ष है सब। अपना सुख पीने से या अनुभव से निशंकता आती है ज्ञानी की निशंकता निमित्त पर आधारित नहीं है उपादान अनुभव पर आधारित है। गुरुदेव ने जान लिया तो आत्मा को क्या फायदा होगा ऐसा कहते थे बात ऐसी चल रही थी कि गुरुदेव को पता चलेगा तो बहुत प्रमोद आएगा गुरुदेव बाकी आया भी है उन्होंने ये प्रश्न उठाया बात तो हमारे दोनों के बीच आत्मा को क्या फायदा होगा उन्होंने भी जान लिया प्रमोद कर लिया मेरे आत्मा को क्या फायदा होगा क्या दृष्टिकोण क्या है हर बात में एक ही बात को देखते हमें क्या कोई जाने नहीं जाने क्या फायदा क्या नुकसान लोक संज्ञा कहीं एक अंश में भी खड़ी नहीं होगी
निष्कृत और कृष्ण
विचक्षणता बहुत थी कि बाधा होने की संभावना बहुत थी बाधा अपने आप को बाधा में डालना क्यों करे ऐसा क्यों करे बाधा होने का बहुत अवकाश है इसलिए अपना काम अपन करे किए जाओ ना दूसरा जानने से फायदा तो नहीं होगा नहीं जानते तो नुकसान नहीं होता है
अगर जानने से नुकसान होने की संभावना है तो हम इनडायरेक्ट इतना भी क्यों पसंद करें, अपना काम करो।
लोग जाने तो प्रभाव ना ज्यादा पड़े,
प्रभावना के रोग को हमें बढ़ाना नहीं है, आता ही नहीं आता है। प्रभावना करना के रोग को हमें बढ़ाना नहीं है, राग है तो रोग है और रोग को हमें बढ़ाना नहीं है। अंग है मालूम है, सब मालूम है, फिर भी यही सम्यक दर्शन का धर्म है। रोग को खत्म करना यही सम्यक दर्शन का धर्म है, रोग को बढ़ाने का नहीं। इसलिए तो ये रामचंद्र जी का दृष्टांत चला है कि सीता जी उनकी पत्नी थी, वो बात नहीं उनको देखनी है, साधर्म तो ठीक है नहीं थी, सम्यक दृष्टि थी। राम के लोग कोई साधर्म थोड़े थे, तो अनुराग किसका बड़ा है?
गांव की तरफ
चला गया क्या उस वक्त? क्या उनको बात से ले चला गया क्या? अच्छा ही था कि शिक्षा एक समय दर्शन था, शोषण होता तो पंडित लोग तो आरोप कर देते कि इस वक्त तो चला गया होगा, लेकिन शिक्षा एक था इसलिए वो तो कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसा बोले बात से ले चला गया क्या। तो अंग है उसकी प्रवृत्ति होवे नहीं होवे इससे कोई इसका कोई अंग का स्थान नहीं है, प्रवृत्ति होवे ही नहीं भी हो भी।
अभी वो पत्र पढ़ा हो
कोई नियम नहीं है इसका
ना? अभी जो पत्र पढ़ा हो कारण के कार्य को इसको प्राप्त हो
सनातन सत्पुरुष का तो हो ये इनके अंग में है ये बात, प्रवृत्ति में इसका कोई नियम नहीं है। प्रवृत्ति से इसको कोई उनको वात्सल्य बिना का ठहरा देवे सिद्ध कर दे तो गलती हो जाएगी बड़ी।
प्रवृत्ति हो या नहीं हो या विरुद्ध हो,
हाँ ऐसा नहीं बनता कि एक आदमी ने लाखों रुपये का दान दिया और कहीं दो पांच रुपये का दान देने में इनकार भी कर दिया, इस वक्त इसका मूड नहीं हो, इनकार भी कर दिया कभी नहीं अभी नहीं चलो नहीं देने का चले जाओ तुम नहीं देंगे, तो अगर उसको कोई मान ले कि ये तो बहुत लोभी आदमी है, दो पांच रुपया भी इसके हाथ से नहीं छूटता है, तो इसका मतलब ये वहां के इसके आगे पीछे के उनको पता नहीं है कि इसने कितना दान दिया है और तो कितना दान देने का इनका भाव रहता है, कितना दे सकता है और दिया भी है तो उनको पता नहीं है। तो एक प्रसंग से पूरा नाप नहीं निकलता कभी, तो एक प्रासंगिक बात बन जाने से इसका आगे पीछे का बात सब उड़ जावे और पूरा नाप निकल जावे, तो नाप करने की जो पद्धति है गलत है। वो दानी है, बड़ा दानी है, उसमें कोई शक नहीं है, भले ही पांच रुपये नहीं दिया। ऐसी ये बात है, उसको पांच रुपया नहीं दिया, लेकिन यही रामचंद्र जी ने कितने दिन मंदिर बनाए होंगे, उनके अयोध्या में कितने बनाए होंगे और कितनी प्रभावना इनके कारण से हुई होगी कौन जानता है। एक प्रश्न ये बन गया तो इससे क्या हुआ, बहुत ज्ञानी थे, शास्त्रार्थ करते थे, कितनी प्रभावना होगी, बहुत इंटेलिजेंट है, मंत्र कला के जानकार थे, इसलिए उसको पुरुषोत्तम पुरुष आज भी लोग कहते हैं, अन्यमति कहते हैं। अन्यमति में तो ये शब्द बहुत प्रचलित है रामचंद्र जी के विषय में, उसको पुरुषोत्तम पुरुष कहते हैं। ये मतलब है कि उनको संसार की कोई बात में उसकी विचक्षणता नहीं हो ऐसी बात नहीं थी, और आज भी इतनी विचक्षणता से चलाया। तो उनके जमाने में ये दोष नहीं माना गया, उनके जमाने में राज चलाने की इनकी विचक्षणता ने ये बात खटारत की है। बाद में तो चर्चा ही चली तो उल्टा सुल्टा दृष्टिकोण से चलती है बात, उनके लिए उस वक्त तो विचक्षणता ही मानी गई है। तो रामचंद्र जी इनकी विचक्षणता आप मानना नहीं सकते, तो जो कदम उठाया सही है, विदाउट थिंकिंग एक्सेप्ट करो। तुम ज्ञान के अनुकूल हो, उसमें क्या दूसरा कैसा हो प्रतिकूल शरीर से,
इसके परिणाम उस विषय में ज्यादा चले जाते हैं तो फिर
आध्यात्मिक नुकसान करे, राग तीव्र करके और इम्बैलेंस हो जा रहे, बैलेंस आउट होने की बात नहीं, यानी तो बैलेंस में रहता है, परिणाम शायद बाहर जाता है वो भी, शायद नहीं जाता है वो भी। अपने ध्रुव खूंटे को छोड़ करके तो जाता है, एक वचन को बहुवचन तो कहीं बना देना नहीं है क्या, बैलेंस आउट हो जाओ।
आवे
कितना भी आवे लेकिन बैलेंस हो जाने की बात,
किस प्रकार के प्रवृत्ति को बैलेंस होने जैसी मानी जाए, किस प्रकार की प्रवृत्ति को बैलेंस होने जैसी मानी जाए,
उसी को जागृति रहनी चाहिए। ये पारमार्थिक कारण इसलिए भाव आता है, लेकिन मेरा घर है वो तो सबूत रखना है, जागृति तो होनी चाहिए, बिना जागृति से जो आता है तो एकांत रूप हो जाता है, तो अपने आप को नुकसान ज्यादा कर लेता है, तो बाहर में तो जो होने वाला सो होगा, अपने परिणाम तीव्र होने से कोई ज्यादा हो जाएगा या मंद होने से कम हो जाएगा ऐसा तो नहीं है, ये तो जो होने वाला है वही होगा परिदृश्य में, तो जागृति को तो बनाए रखने का है। मोक्ष को ज्ञान दशा नहीं है लेकिन जागृति तो होनी चाहिए। प्रायोरिटी सारी बदल जाए इसका नाम इम्बैलेंस है, अपना हित करना वो प्रायोरिटी है, और ये करते करते जो भी हो सो हो, नहीं हो सो नहीं हो, इतना प्राधान्य दे दे वे बाहरी बाहर के कार्य को, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, कर्तव्य हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, क्यों नहीं होता है, होना ही चाहिए, तो कर्तव्य में आ जाएंगे। खाली निश्चय की बात करें और अशुभ में रस पड़ा रहे तो निश्चय आभासी हो जाता है, परंतु जो निश्चय स्वभाव में जोर देकर पर्याय की गौणता करे ये निश्चय आभासी कैसे होगा? स्पष्ट करें, निश्चयाभासी को निश्चय स्वरूप का अवलंबन नहीं होना चाहिए, उसको तो स्वरूप नजर में ही नहीं आया, पहचानने में भी नहीं आया, तो उसको जो ज्ञान में लक्ष्य में आई नहीं उसका अवलंबन कहां से आएगा? अवलंबन नहीं होना चाहिए, वो निजात्म रस के वेदन से शून्य है, उसको आत्मरस नहीं आएगा, स्वभाव का रस तो उनको आने वाला नहीं है। तो वो सिर्फ निश्चय की बातों में या विकल्पों में बोले नहीं तो विकल्प करे, विकल्पों में जोर देता या लगाता रहता है, ऐसी स्थिति बस उसको अशुभ में यानी पंचेंद्रियों के विषयों में सुख के अभिप्राय पूर्वक रस आता है, रस आता है इतना नहीं है, अभिप्राय पूर्वक रस आता है, क्योंकि स्वरूप में सुख है वो तो उनको पता नहीं, और अनादि की वो बात तो है अभिप्राय में सुख पर में सुख है, अभिप्राय पूर्वक रस आता है, बिना रहेगा जो निश्चयाभासी का प्रमुख लक्षण है, ये निश्चयाभासी का मुख्य लक्षण है।
जो अपने गुजराती में जो दिया अपने विषय विषय अनुक्रमण का दिया सभी में गुजराती में किस किस विषय के
क्लासिफाइड
आने वाले में देश देना है
नया एडिशन में गुजराती में
हिंदी का और नए एडिशन कर रहे हैं अनुक्रमण
दे रहे तो अच्छा इसमें क्या नुकसान है? देखो तो इसमें क्या है कि कभी स्मृति में नहीं है कि वो बात किस नंबर की है, तो उसका वर्गीकरण के हिसाब से पता चलता है कि इस वर्ग की बात है, जैसे प्रसन्नता किसको कह रहे हैं, तो इसे 10-15 या 2-5 जो भी नंबर है उनमें से सीधा पकड़ लेना है,
5-10 मिनट में हुआ है उसमें, और जो नया अभी जो जिस सिस्टम से ये हुआ है क्रमानुसार के बचना मतलब वर्गीकरण में जो है थोड़े देखने पड़े जिसके अंदर दूसरे बोल दूसरे में
अपन एक वर्ग में दिखते हैं ऐसा बनता है उसका क्या करें?
गुजराती में वो एक वर्ग में दिया हुआ बहुत सी बात है,
वैसे हमने तो क्या किया है एक वर्ग में डालने के हिसाब से, तो मुख्यतया वही बात हमको भाषित हुई इसमें, और उसमें दूसरा भी स्पर्श होता है, दूसरे वर्ग का दूसरा क्लास का भी स्पर्श होता है, तो ये आर्गुमेंट आती है कभी कभी आपने इसमें लिखा लेकिन वो भी बात तो इसमें है, तो इस वक्त कन्फर्म करते हैं कि हाँ वो भी विषय है वो भी विषय है, तो कभी तो एक बोल में दो होते हैं कभी एक बोल में तीन होते हैं, ऐसे भी होता है, उसको असर डबल करे या नहीं करे दोनों में लिखे एक में लिखे, पॉलिसी तो बनानी है, पॉलिसी के हिसाब से क्या करें?
दो
की कभी इसमें मुख्य गुण होते हैं कभी मुख्य गुण नहीं होते ऐसा ले उसमें, जो फर्स्ट क्लास में लिया, दूसरा सेकंड क्लास होता है, या कभी दोनों बराबर भी मिलता है, दोनों ऐसा भी मिलता है। तो कभी ऐसा भी उत्तर देते कि मुख्य रूप से तो उस वर्ग की ये बात है, ग्राउंड रूप से दूसरा वर्ग की बात है। तो कभी दोनों में दोनों का इंपॉर्टेंस उतना ही हो, ऐसा भी बन सकता है।
मुख्य वर्ग के भेद में जाएंगे तब तो बड़ा मुश्किल है वर्गीकरण का,
क्योंकि सब में मुख्य गुण नहीं होंगे, कभी इक्वल इम्पोर्टेंस हो, कभी ज्यादा कम इम्पोर्टेंस हो, दोनों बात बनने में नहीं
जाएंगे। भैंसरे के बचना है, भैंसरे के बचना मर्ग या प्रमागम सार या प्रबोधदेव का जो वर्गीकरण है, इसमें इस प्रकार के कम है,
इस प्रकार के
डुप्लीकेशन कम आता है। दृढ़ दृष्टि प्रकाश के अंदर जब अपन ने दो तीन विषय को ये बाहर पाड़ा, क्लासिफिकेशन को दो तीन विषय को जो बाहर दिया, दूसरा कुछ खोल दिया विधि विज्ञान, उसमें फिर वापस आपको देखना पड़ा था हमको लोग, इसलिए थोड़ा क्या वो भाई को श्रम के हिसाब से मैंने नहीं लिया, फिर वापस उसको देख करके करना।
पर इसमें क्या है, एक बात कि जो इंटरेस्टेड है और जिनको पता है कि क्लासिफिकेशन किया है, तो वो तो क्या है कि अपने जो सर्कल है उसमें तो वो सर्कुलेट हो गया है, जो भी क्लासिफाइड है तो मेरे ग्रंथ से या इसमें लिस्ट बना है, इससे जैसे परमानुसार है।